अभी आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी, जैसे ही आपका नाम सुनते हैं और पिछले लगभग 15 वर्षों से यहाँ की बीकेज में भी जो अपने दिल की बीमारियां लेकर आए और ठीक हुए, उनके अनुभव सुनते सुनते, उनकी सीडीज देखते हैं, प्रत्यक्ष में जब उनके अनुभव सुनते हैं, तो ऐसा लगता है कि भाई साहब का नाम सुनते ही बड़ा सूदिंग इफेक्ट होता है, बहुत क्योर फीलिंग, सिक्योर फीलिंग, बहुत सूदिंग इफेक्ट, कि बहुत सारी बातों का, बीमारियों का, कमजोरियों का इलाज किस तरह से अपने थॉट सिस्टम को अच्छा रखने से कितना सहज रूप से हो जाता है। आपके इलाज के साथ जो आप सिखाते हैं उसके साथ ऊंची क्वालिटी की ज्ञान के मनन चिंतन की बातें वो जिंदगी में प्रैक्टिकली चेंज लेकर आती हैं। तो इसीलिए आज आदरणीय डॉक्टर सतीश गुप्ता जी का इस बारे में संपूर्ण पवित्रता की गहराई क्या है उसके बारे में सुनते हुए ये बात आपको जानने का और मनन करने का मौका मिलेगा कि सचमुच प्योर थॉट्स की कमी है, जो ये बीमारियां, जो ये ब्लॉकेज मेरे अंदर हुई, ये आप खुद महसूस कर सकते हैं। कितनी गहरी बातें आप इतना सहज तरीके से, और उसमें भी जब मेडिकल तरीके से बताते हैं तो वो अंदर जाती हुई महसूस होती हैं। आपने अपनी उस अवस्था में ज्ञान को समझा जब लोग कह दिया करते थे कि ये उम्र थोड़ी है ज्ञान सुनने की, जब आप बताते हैं कि छोटा बच्चा, मेरी युगल और मैं क्लास करने जाया करते थे सुबह सुबह स्कूटर पर, और उसके बाद कितना जल्दी जल्दी आके तैयार करना, तैयार होना, हॉस्पिटल जाना, और उस लाइफ से शुरू होकर आप आज जिस चरम सीमा पर पहुंचे हैं, बाबा ने आपको इतना आगे रखा, उसके पीछे आपका बहुत साफ सुथरा सोचना, आपके अंदर की पवित्रता, ये बहुत उसके पीछे मीनिंग रखती है। आपकी बाहरी दुनिया का इतना सुंदर बायोडाटा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मैं थोड़ा सा जो नए भाई बहन है उनके लिए बताना चाहूंगी, क्योंकि जो पुराने भाई बहन हैं उनके सामने डॉक्टर गुप्ता की पर्सनैलिटी उनके कर्तव्यों से, उनकी सेवाओं से बहुत प्रत्यक्ष हो चुकी है। बाबा प्यार से इनको, इनके सभी पेशेंट्स को दिल वाला कह देते हैं, और ये वो दिल वाले डॉक्टर हैं जो बहुत बड़े दिल से सेवा करते हैं, और उन सेवाओं में आगे बढ़ते गए, और कितनी आत्माएं आपसे लाभान्वित हुई। डॉक्टर सतीश गुप्ता, आपकी MBBS आपने दिसंबर 1980 मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली से किया, MD इंटरनल मेडिसिन जुलाई 1989 लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज एंड एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स दिल्ली यूनिवर्सिटी न्यू दिल्ली, FCCP कार्डियोलॉजी इन 1991, फेलोशिप अवार्डेड बाय कॉलेज ऑफ चेस्ट फिजिशियंस इंडिया, लॉन्ग टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम इन कार्डियोलॉजी एट सर गंगाराम हॉस्पिटल एंड एस्कॉट्स हार्ट इंस्टीट्यूट एंड रिसर्च सेंटर न्यू दिल्ली 1994-1995, FIAE फेलोशिप अवार्डेड बाय इंडियन अकेडमी ऑफ इको कार्डियोग्राफी, FIMSA फेलोशिप अवार्डेड बाय इंटरनेशनल मेडिकल साइंसेज अकेडमी। आप वर्तमान समय शांतिवन में ग्लोबल हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, इस पर आप सीनियर मेडिकल फिजिशियन, सीनियर कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी एंड मेडिसिन, इसके रूप में सेवाएं अपनी दे रहे हैं। 1995 से ही आप यहां अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। आपकी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड फॉर आउटस्टैंडिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ प्रिवेंटिव कार्डियोलॉजी, presented by His Excellency President of India, Dr. APJ Abdul Kalam, International Scientist of the Year 2001 by IBC, Cambridge, England, for significant contribution to preventive cardiology and cardiac rehabilitation, Outstanding Scientist of the 20th Century for evolving concept of soul-mind-body medicine for health management in 21st Century by IBC Cambridge, England. इस तरह की अनेक उपलब्धियां, अनेक अवार्ड आपको, जो अवार्ड आपको प्राप्त हुए, वो एक्चुअली बाबा की प्रत्यक्षता रही, क्योंकि प्यारे बाबा ने आपको जो प्रतिभाएं, जो दिव्य बुद्धि दी, उस आधार पर आपने इतना सहज रूप से बाबा का ये ज्ञान हंसते हंसते मेडिकल साइंसेज और बीमारों को ठीक करते हुए सहज रूप से प्रत्यक्ष कर दिया। और वाकई जब आपका अनुभव हमने सुना था पहली बार, हमें लगा कि बाबा के ये वाह वाह बच्चे हैं, अनन्य बच्चे हैं, जिनसे बाबा कितना सहज प्रत्यक्षता करा रहे हैं। इस तरह के बाबा के वाह वाह बच्चे का हम दिल से अभिनंदन करते हैं, एक हाथ हिलाकर अभिनंदन करेंगे। आज आप हमें संपूर्ण पवित्रता की गहराई समझाएंगे, डॉक्टर सतीश गुप्ता जी।
ओम शांति। कल ही हमने मीठे बाबा से मिलन मनाया और बाबा ने हमको अपनी श्रीमत दी कि स्वयं के परिवर्तन के साथ साथ हमें क्या करना है, विश्व के हर कोने कोने में, हर गली गली में, हर जन जन तक ये संदेश पहुंचाना है, ताकि कोई उलाहना न रह जाए, है ना। यही बात थी ना कल की मुरली की, वो सब कैसे पॉसिबल है। तो आज हम इसी बात पर और गहराई से समझेंगे कि कैसे वो संदेश जन जन तक पहुंच जाए, कैसे हमारे स्वयं की उन्नति हो सके और क्या तरीका है जिससे सब पॉसिबल होगा। तो ये जो तरीका है वो है, जितना गहराई से हम पवित्रता को समझ जाएं, क्योंकि जो नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है, जो नई दुनिया आने वाली है, नया स्वर्ग आने वाला है, उसकी फाउंडेशन क्या है, उसकी फाउंडेशन है पवित्रता, प्योरिटी। वो प्योरिटी क्या है, प्योरिटी की परिभाषा क्या है, वो प्योरिटी कैसे हमारे जीवन में आए, उस प्योरिटी से हम कैसे सर्वगुण संपन्न, सोलह कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, अहिंसा परमो धर्म बनेंगे, और कैसे हम उस पवित्रता के आधार पे हम एक नए विश्व की स्थापना करेंगे, और आने वाले विनाश के समय में, जो बाबा ने कहा अचानक कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, उस समय कैसे हम इस पवित्रता के द्वारा बाबा की जो टचिंग्स हैं, कैचिंग पावर और टचिंग पावर के आधार पर कैसे हम बाबा के उस समय कार्य को संपन्न करके सब आत्माओं को, दुखी आत्माओं को सकाश दे सकेंगे, आज हम इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं चाहूंगा कि अगले 45 मिनट के लिए आप अपने मन बुद्धि को एकाग्र कर दें, एकदम एकाग्र हो जाएं, और हम एक मिनट फिर दोबारा से बाबा को याद करते हैं गहराई से, एकदम बस एक ही मन में संकल्प हो, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा दोनों भ्रुक्ट के मध्य यहां चमक रही हूं, मुझ आत्मा से सात गुण मेरे सारे शरीर में जा रहे हैं, और परमात्मा सात गुणों का सागर है, ब्रह्मा के तन में बैठा हुआ है, शिव बाबा ब्रह्मा के तन में विराजमान है सूक्ष्म वतन में, और वो उनसे सारी शक्तियां मुझ आत्मा में आ रही हैं, और मुझ आत्मा से होती है सारे शरीर में जा रहे हैं। चलिए एक मिनट के लिए सभी इस बात में एकाग्र हो जाएं, ताकि हम इसको गहराई से समझ सकें। शांति, संपूर्ण पवित्रता। कहते हैं, आपने सुना होगा, मुरली में भी सुना होगा, कई बार बाबा इस बात को गहराई से समझाते हैं कि बच्चे, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। ब्राह्मण जीवन में अगर पवित्रता है तो हम ब्राह्मण हैं। पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है। जैसे कहते हैं ना, जब तक श्वास चल रहा है तो हम जिंदा हैं। इसी तरह से जब तक पवित्रता है तब तक हमारा ब्राह्मण जीवन है। जिस दिन पवित्रता खत्म हो जाती है या किसी तरह से भंग हो जाती है तब हम ब्राह्मण नहीं होते। तो पवित्रता ब्राह्मण जीवन का श्वास है, पवित्रता ब्राह्मण जीवन का फाउंडेशन है। आपने यह भी सुना होगा, पवित्रता सुख और शांति की जननी है, सुख और शांति की मां है। सुना है आप, सबने सुना ना मुरलियों में। तो पवित्रता सुख और शांति की मां है और पवित्रता पर के आधार पे ही सतयुग और त्रेता के 21 जन्म है। तो पवित्रता फाउंडेशन और नींव है। ब्राह्मण जीवन सतयुग और त्रेता के देवताई जीवन की नींव है। तो 21 जन्म की इस पे बिल्डिंग खड़ी होती है। ये 21 जन्म की जो बिल्डिंग खड़ी होती है, जो पवित्र जीवन की बिल्डिंग है, तो उसकी जो नींव क्या है, पवित्रता है। अगर जिसकी पवित्रता कच्ची है तो उसकी बिल्डिंग कैसे होगी? बिल्डिंग हिलेगी ना? बिल्डिंग पक्की होगी क्या? बिल्डिंग पक्की नहीं होगी। अर्थात सत्युग त्रेता के 21 जन्म जो होंगे हमारे राजाई जीवन के नहीं होंगे, प्रजा या दास दासी जीवन के होंगे। तो पवित्रता की अगर परिभाषा के रूप में समझें, आप सबने सुना भी है समय समय पर, किंतु आज उनके हम शाब्दिक अर्थ में ना जाकर बहुत गहराई में जाएंगे ताकि उसको हम समझ सकें और जीवन में अपना सकें। पवित्रता जो मैं एक जस्ट रिवाइज करता हूं डेफिनेशन बाबा की, पवित्रता माना ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी के साथ साथ ब्रह्माचारी। ब्रह्मचारी शब्द क्या है? ब्रह्मचारी माना है, ब्रह्मचर्य माना क्या है कि ब्रह्म तत्व में, जैसे ब्रह्म तत्व में आत्माएं अर्थात ब्रह्मलोक में परम धाम में जैसे आत्माएं एक दूसरे को आत्मा के रूप में ही देखती हैं, ऐसे ही जब हम इस जीवन में एक दूसरे को सिर्फ आत्मा के रूप में देखें, मैं एक चमकता हुआ सितारा हूं, दूसरे भी सब चमकता हुआ सितारा है, तो यह है ब्रह्मचारी या ब्रह्माचारी, ब्रह्मचारी या ब्रह्मचर्य। ऐसे ब्रह्मचर्य का दुनिया में मतलब सिर्फ काम विकार का परहेज से लेते हैं, स्थूल काम विकार के परहेज से लेते हैं, किंतु ब्रह्मचारी का मतलब गहरा मतलब क्या है कि हम सब एक दूसरे को सिर्फ आत्मा के रूप में देखें, भाई बहन के रूप में भी नहीं, सिर्फ मैं हम आत्मा आपस में भाई भाई हैं। यही आज हमने मुरली में भी सुना कि बाबा ने कहा ये सबसे श्रेष्ठ तरीका है, हम मैं आत्मा हम आपस में आत्मा भाई भाई हैं, तो ये पावन बनने का सबसे श्रेष्ठ तरीका है। तो एक तो ये और साथ साथ ब्रह्माचारी, ब्रह्माचारी का मतलब जो ब्रह्मा बाबा ने प्रैक्टिकल में करके दिखाया, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क और स्वपन तक भी पवित्रता। बाबा ने पिछले कुछ सालों में बताया कि इवन व्यर्थ संकल्प आना भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प माना, सपोज आप अपने घर में रहते हैं या यहां रहते हैं और आपके मन में यह आया कि इसने ऐसा क्यों किया, ये ऐसा क्यों करता है, ये ऐसा क्यों करती हैं, ऐसा मेरे साथ क्यों हुआ, ये क्या क्यों कैसे, ये आना भी, मन में आना भी अपवित्रता है। क्योंकि बनाया हुआ ड्रामा ये बना बनाया ड्रामा है, बाबा का बनाया हुआ ड्रामा है, इसमें क्वेश्चन रेज करना, इसमें क्या क्यों कैसे करना, ये भी ड्रामा, बाबा पे अविश्वास करना, ड्रामा पे क्वेश्चन रेज करना, तो ये भी अपवित्रता है। अब अगर हम इसकी और थोड़ा सा उसमें चलते हैं तो पवित्रता कैसे हमारे जीवन में आए, क्या है पवित्रता? पवित्रता लाने के लिए अगर हम देखें, हमारे चार नियम और चार धारणाएं हैं, चार मर्यादाएं हैं, सभी जानते हैं हम सब ब्राह्मणों की चार नियम कौन से हैं, चार नियम कौन से हैं? सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, जो पावरफुल अमृत वेला करे, सच्चा ब्राह्मण वो। ब्राह्मण शब्द की सबको परिभाषा तो पता है ना, ब्राह्मण शब्द की परिभाषा क्या है? जैसे ब्रह्मा शब्द है ना, ब्रह्मा शब्द है, ब्रह्मा माना ब्राह्मणा, बड़ा, विशाल, बेहद, मां, बेहद की मां, अर्थात हम सबकी मां कौन है? सभी मनुष्य आत्माओं की मां, किसी धर्म किसी जाति की आत्माएं हो, उन सबकी मां कौन है? ब्रह्मा। शिव हमारा पिता है, ब्रह्मा हमारी बेहद की मां है। इसी तरह से जो ब्राह्मण शब्द है, इसका अगर हम शाब्दिक अर्थ बनाएं तो ब्राह्मणा बड़ा, बेहद, विशाल, और मन माना मन। तो जिसका ब्राह्मण वो व्यक्ति है जिनका मन और बुद्धि विशाल है, बेहद का है, जो हद का जिनका मन और बुद्धि है वो मनुष्य है, अर्थात मनुष्य माना मन के वश में रहने वाले, हदों में रहने वाले। ये मेरी देह है, वो देह हद है, देह के संबंधी हद में है, देह के स्वभाव संस्कार हद के हैं और देह के पदार्थ हद के हैं, और आत्मा बेहद है। एक सेकंड में यहां, एक सेकंड में कहां, तो ये बेहद है, परमात्मा बेहद है, हमारे परमात्मा से संबंध बेहद के हैं, कोई भी संबंध, ए से लेके जेड तक संबंध, का से लेके आखिरी जो अक्षर होता है ना हमारी शब्दावली का, उस तक कोई भी संबंध अगर आप बनाएं तो हमारे बाबा से सब संबंध है, और ये ड्रामा बेहद है। तो ब्राह्मण माना ही जिसका मन और बुद्धि विशाल है, बेहद है, जिसकी मन में सदा, बुद्धि में सदा यह है कि मैं देह नहीं, मैं आत्मा हूं। ब्राह्मण माना जिसकी बुद्धि में सदा ही परम धाम में रहती है, सूक्ष्म वतन में रहती है, बेहद में रहती है। ब्राह्मण माना वो जिसकी बुद्धि में सदा ही एक एक संबंध बाप से, एक एक संबंध की अनुभूति रहती है, उन अनुभूतियों में समाया रहता है। ब्राह्मण माना वो जिसकी बुद्धि में ड्रामा का हर राज, अर्थात सृष्टि के आदि मध्य अंत का, कर्मों की गुह्य गति का राज, जिनकी बुद्धि में सदा भरपूर है इस ज्ञान से, वो है ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द जो है इसकी ही बहुत बड़ी गहरी परिभाषा है। इसी में अगर हम गहरे टिक जाएं तो सारी बात खत्म हो जाती है। तो ब्राह्मण जो शब्द है इसकी, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी अमृत वेला मिस ना करे, है ना, पहला नियम है ब्राह्मणों का। दूसरा नियम है ब्राह्मण माना वो, सच्चा ब्राह्मण वो जो कभी मुरली मिस ना करे, पढ़ने की बात नहीं है, जो क्लास में आके मुरली सुने, सम्मुख बाबा के कोई भी हमारी टीचर हमें मुरली सुनाए, सेंटर यहां दादी सुनाए या सेंटर पे कोई बहन सुनाती है या भाई सुनाते हैं, वो मुरली सम्मुख सुनने का आनंद ही अलग है। वो हम मुरली के पर थोड़ा चिंतन करेंगे कैसे मुरली के द्वारा हमारे जीवन में पवित्रता आती है, मुरली का क्या महत्व है हमारे जीवन में। तीसरी बात, सच्चा ब्राह्मण वो जो बार बार कर्मयोगी जीवन में, सारे दिन के जीवन में, चाहे खाना खाते हुए, चाहे सैर करते हुए, चाहे ऑफिस में काम करते, दुकान में काम करते, घर में खाना बनाते, घर की सफाई करते हुए, कोई भी कार्य करते हुए उसकी याद रहे, बाबा की याद में खाना बनाए, बाबा की याद में ऑफिस में काम करे, बाबा की याद में दुकान पे बैठे, बाबा की याद में हर काम बाबा की याद में हो। और बार बार बाबा ने आज क्या कहा, मुरली ही बाबा की श्रीमत है, बार बार आज बाबा ने मुरली में क्या कहा, क्या मैं उस पर चल रहा हूं, अटेंशन रखे। तीसरा नियम है, पहला है अमृत वेला, दूसरा मुरली, तीसरा अटेंशन, सारा दिन अटेंशन। बाबा और मुरली, इन दो का सारा दिन अटेंशन रहना चाहिए। और चौथा, सोने के पहले समय पर सोना, 9:30 बजे के आसपास सो जाना, और सोने के पहले अपना पूरा पोता मेल, अर्थात अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी मैंने किया, एक एक घंटा चेक करते हुए, क्या अच्छा हुआ, क्या बुरा हुआ, सोचने में क्या अच्छा या बुरा हुआ, देखने में, सुनने में, बोलने में, खाने में, कर्म करने में, अपना पूरा पोता मेल बाबा को देना, सच्चाई सफाई से देना, फिर अपना चार्ट भर के बाबा की गोद में सो जाना। तो अमृत वेला, मुरली, अटेंशन, और बाबा को सोने के पहले अपना पूरा हिसाब किताब, पोता मेल मीन्स सारा दिनचर्या का, जो भी मुझसे अच्छा बुरा जो भी हुआ, सब बाबा को देके और फिर बाबा की गोद में सो जाना। ये चार ब्राह्मणों के सच्चे नियम, सच्चे ब्राह्मण के नियम। सच्चा ब्राह्मण चाहे ट्रेन में हो, चाहे प्लेन में हो, चाहे घर में हो, चाहे किसी भी दिनचर्या में हो, घर में शादी हो, घर में किसी की डेथ हो गई हो, चाहे बीमार हो, कभी भी इन चार नियमों को मिस नहीं करते। अब ये जो चार नियम है, इन चार नियमों की सबसे जो बड़ी बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, जिसके आधार पे अमृत वेला पावरफुल होता है, मैं यहां थोड़ा इस पर ब्रीफ कर दूं। अमृत वेला पावरफुल कब होगा, जो जितना अधिक सच्चाई से अपना पोता मेल हम बाबा को सोने के पहले देते हैं। सुबह से एक लेटर लिखें, मीठे बाबा, आज सुबह मैं उठा, अमृत वेला ऐसा हुआ, अमृत वेला में मैं 45 मिनट से 20 मिनट मेरे को ध्यान नहीं लगा या मेरे को नींद आ गई, जो भी सच्चाई से 20 मिनट मेरा ऐसा लगा, मैं लगा मुझे 10 मिनट मैं उसमें सूक्ष्म वतन में गया, 1 मिनट परमधाम में गया, जो भी जैसा भी हुआ, अमृत वेला हुआ, फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने क्या किया, बाबा मैंने वहां उसने मुझे ऐसा कहा तो मुझे ऐसा गुस्सा आया या व्हाटएवर कुछ गलत मुख से निकल गया, जो भी दिनचर्या में खाना खाते समय मेरी बुद्धि खाने में चली गई, स्वाद में चली गई, मैं शुरू में याद था बीच में भूल गया, फला जो भी कैसे सारी दिनचर्या लिख दो, फिर साइन करके बाबा को 000 पे, बाबा का हॉटलाइन फैक्स नंबर है, क्या नंबर है, 000, है ना, आप सबको पता है, जब हम अपने मोबाइल में टेलीफोन में क्या, अगर 10 डायल करें तो हम स्टेट के बाहर जाते हैं, 20 डायल करें तो देश के बाहर चले जाते हैं, और 30 डायल करें तो विश्व के बाहर चले जाते हैं, है ना। तो मैं आत्मा 0, मेरा बाप 0, और अभी तक जो आज सारे दिन में बीता मल्टीप्लाइड बाय 0, 0 से गुना कर दें तो वो लेटर मेरा बाबा के पास फैक्स हो जाता है। और फिर बाबा के पास पहुंच जाने के बाद बाबा को सरेंडर सच्चे दिल से करके फाड़ के डस्टबिन में डाल दो, और फिर बाबा को याद करें, चार्ट भरें, जो चार्ट हमारा होता है, और उसके बाद सच्चाई से चार्ट भरें, दिखाने के लिए नहीं, किसी को दिखाना नहीं है, वो मेरे लिए है, बाबा के और मेरे बीच की बात है, सच्चाई से भरें। घंटे घंटे का चार्ट रखना बहुत जरूरी है कि मैं 1 घंटे में कितने मिनट में बाबा की याद में रहा, 10 मिनट रहा, 20 मिनट रहा, जैसे हम लोग अपना चार्ट रखते हैं तो हम देखते हैं कि आज मेरा 9 से 10 में, सुबह 9 से 10 में मेरा चार्ट थोड़ा कम हुआ, तो मुझे 10 से 11 के बीच में टेंशन रहती है कि 10 से 11 पेशेंट देखते हुए इतना मैं अटेंशन रखूं, 10 से 11 माना मेरा कम हो गया तो 11 से 12 मेरी ज्यादा अटेंशन रहती है, तो हर कर्म करते अटेंशन रहती है ऐसा चार्ट रखने से, है ना, क्योंकि अल्टीमेटली हमको कहां जाना है, ना जाने कौन सी घड़ी अंतिम घड़ी हो, है ना, मम्मा का स्लोगन है ना, हर घड़ी अंतिम घड़ी है, तो ऐसा अटेंशन कि हमेशा जस्ट मेरी अटेंशन लगी रहे, जब चाहे अचानक, जब चाहे आखिरी समय आ जाए मैं रेडी हूं जाने के लिए, एवर रेडी, तो ये स्थिति हमारी होनी चाहिए। तो ये जब हम लेटर लिखते हैं, एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम सारा दिन में कर्म करते हैं, हमारे ब्रेन में एक जैसे हार्ट का ECG होता है ना, हार्ट की धड़कन ऊपर नीचे हम ईसीजी में रिकॉर्ड कर सकते हैं, ऐसे ब्रेन का ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम, इलेक्ट्रोड लगा के हम ब्रेन में चेक कर सकते हैं। नॉर्मली हमारी बीटा रिदम होती है 13 से 18 बार एक सेकंड में, ऐसे से लगभग इतने ही विचार हमारे एक मिनट में चलते हैं, 13 से 18 मतलब एवरेज 15 विचार हमारे एक मिनट में चलते हैं जब हम नॉर्मल बैठे, आंख खोल के बैठे। किंतु जैसे ही हमारे मन में चिंता आती है, जल्दीबाजी आती है, डर लगता है अंदर से, थोड़ा सा किसी के प्रति हम दोष निकालते हैं उसके लाइफ में, या अपने प्रति कुछ गलत बात सोचते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, तो हमारे विचारों की स्पीड फास्ट हो जाती है। हमारे विचारों की स्पीड 19 से 30 हो जाती है। और अगर हम ये पांच विकार काम क्रोध लोभ मोह अहंकार के संकल्प चलाते हैं तो हमारे विचारों की स्पीड 31 से 45 तक हो जाती है, और 45 के ऊपर आदमी पागल कहलाता है, मैड, या तो डिप्रेशन में चला जाता है या तो स्किज़ोफ्रेनिया हो जाता है। और इसके अपोजिट अगर हम इसकी मैं सार रूप में कहूं, चार बातें हैं जिससे हमारे स्पीड बढ़ती है विचारों की, तो वो है देह के संबंध, देह के स्वभाव संस्कार, देह के पदार्थ। अगर आप 15 की स्पीड पे बैठे हैं, अगर आप देह के बारे सोचना शुरू कर दो, देह के संबंधों के बारे सोचना शुरू कर दो जो कि अनस्टेबल हैं, आज हैं कल नहीं है, अभी कैसे हैं कल कैसे होंगे, देह अभी कैसी है कल कैसी होगी, देह के स्वभाव संस्कार, देह का स्वभाव है काम विकार। बाबा ने कहा ना, देखते ही क्या क्या पैदा होता है, क्रिमिनल ख्यालात पैदा होने लगते हैं। तो देह का स्वभाव ही काम विकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, अहंकार, ये देह के स्वभाव नेचर है देह के। और देह का संस्कार क्या है, आदत क्या है, देह की आदत क्या है, देह की आदत है आलस्य। अपने को देह समझोगे ना, आज तो बहुत थक गए अभी सो जाते, अमृत वेला जो थोड़ी देर में 4:30 कर लेंगे, रात को तो 12 बजे सोए थे अभी कुल 5 बजे कर लेंगे, बाबा कहता कोई बात, सारा संगम ही अमृत वेला है। आलस्य अपने आप आता है, आलस्य, अलबेलापन, दूसरे में दोष निकालने की आदत, बदला लेने की भावना, ये देह की आदत है, देह का संस्कार है। शक करना, अनुमान लगाना, चिंता करना, भय लगना, और जल्दीबाजी और ईर्ष्या द्वेष, कंपैरिजन कंपटीशन, ये देह की आदत है। तो ये और देह के पदार्थ, जो भी हमारे प्रॉपर्टी है, हमारे कपड़े हैं, हमारी पर्सनल चीजें हैं, उनमें बुद्धि रहती है। तो जैसे ही ये हमारी बुद्धि इसमें जब विचार तेज चलने शुरू हो जाते हैं, इसकी बजाय अगर हम ज्ञान का सार है ABCD, A फॉर आत्मा, B फॉर बाबा, C फॉर कनेक्शन माना संबंध, और D फॉर ड्रामा, संसारिक नाटक है। अगर हम इसको दोबारा से समझें, A माना आत्मा, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा दोनों भ्रुक्ति के मध्य, यहां से लगभग 2.5 इंच दूर, यहां से 3 इंच नीचे, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा हूं, दोनों ब्रेन का सेंटर है हाइपोथैलेमस, और उसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसके मध्य में स्थित हूं, यहां से 7 एनर्जी मुझे आत्मा से निकलने सारे शरीर में फैल रही है, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, 7 एनर्जी मेरे से निकल रही है, सारे शरीर को नरिश कर रही है, मन बुद्धि संस्कार मेरी 3 सूक्ष्म शक्तियां हैं, ये हो गया ए। बी, मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा की संतान हूं जो परमधाम में रहते हैं, और वो 7 गुणों के सागर हैं, ज्ञान के सागर हैं, पवित्रता के सागर, शांति, प्रेम, सुखानंद और शक्तियों के सागर हैं। सी फॉर कनेक्शन, अर्थात मेरे सरल संबंध उनके साथ हैं, ऐसे तो मेरे बहुत सारे संबंध, हर संबंध उनके साथ है, पर मुख्य 9 संबंध की अनुभूति हम सबको होनी चाहिए। पहली मां की, पहला संबंध मेरा मां का संबंध है बाबा के साथ, दूसरा संबंध पिता का है, तीसरा संबंध शिक्षक का है, चौथा संबंध सतगुरु का है, पांचवा संबंध बंधु माना बड़े भाई का है, फिर सखा का है, साजन, सर्जन और बच्चा, ये 9 मुख्य संबंध हमें सबको अनुभूति होनी चाहिए, सबको इसकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। और फिर जो है, अगर हम इसकी गहराई में और जाएं, क्योंकि अगर मैं अनुभूतियों में हमें पता होना चाहिए इसका क्या हम अनुभव करें बाबा से, मां के रूप में शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमें मां की पालना और प्यार देते हैं, और पैदा होते ही हमको एक गिफ्ट देते हैं, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट की गिफ्ट देते हैं, दिव्य बुद्धि की लिफ्ट पैदा होते ही दे देते हैं। तो ये लिफ्ट ऐसी है जो कि हमें सीधा बाबा की गोद में उतारती है, सूक्ष्मता में नहीं उतारती है। हम यहां बैठे हैं, उस लिफ्ट में बैठो, सीधा बाप दादा की गोद में सूक्ष्मता में हम आ जाकर उतर जाते हैं, एक सेकंड में पहुंच जाते हैं। ईंधन क्या है? शुद्ध संकल्प। शुद्ध संकल्प कौन से वाला? मैं अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु आत्मा, अति सूक्ष्म ज्योति बिंदु परमात्मा के संतान, बस ये कि शुद्ध संकल्प। संकल्प किया और पहुंचे, है ना, बाबा ऐसे करके बैठा है, आओ बच्चे आओ। बाप के संबंध से बाबा क्या करता है? हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र गिफ्ट में देता है, जिससे हम अपने आप को देख सकते हैं, अपने बाप को देख सकते हैं, अपने घर को देख सकते हैं, कर्मों की गुह्य गति को समझ सकते हैं। टीचर के रूप में बाबा हमको त्रिकालदर्शी बनाता है, रचता और रचना के आदि मध्यान का ज्ञान देता है, अर्थात हमको सुदर्शन चक्रधारी बना देता है। सुदर्शन चक्र का धारी माना, एक सेकंड में हम चक्कर लगाते हैं, अनादि स्वरूप की अनुभूति करते हैं, एक सेकंड में आदि स्वरूप की अनुभूति करते हैं देवता स्वरूप की, एक सेकंड में हम मध्य पूज्य स्वरूप की अनुभूति करते हैं, एक सेकंड में हम संगमयुगी ब्राह्मण फरिश्त ब्राह्मण रूप की अनुभूति करते हैं, बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे पढ़ा रहा है, और एक सेकंड में हम न्यारा प्यारा फरिश्ता रूप स्वरूप बन जाते हैं, और फिर वापस अनादि स्वरूप पे चले जाते हैं। ये हमारा ड्रिल, पांच स्वरूप की ड्रिल, ये हमें टीचर सिखाता है, टीचर के रूप में सिखाता है, त्रिकालदर्शी बनाता है। और सतगुरु के रूप में बाबा क्या करता है? हमें त्रिलोकीनाथ बनाता है। त्रिलोकीनाथ माना हमें मल्टीपल एंट्री वीजा दे देता है, जब चाहे जितना समय चाहे सूक्ष्मतन में आओ, परमधाम में आओ, छुट्टी है, सुखधाम में जाओ, जितना समय चाहो उतना समय रुक सकते हो, अर्थात हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा दे देता है, हमें विक्रम विनाश करने की डायरेक्शन देता है, श्रीमत देता है, उसको हम फॉलो करके अपने विक्रम विनाश करते हैं, और हम उसका बंधु के रूप में क्या करता है? बंधु के रूप में हमें बड़ा भाई क्या करता है? छोटे भाई से सारा बोझ ले लेता है। बच्चे कहते ना, मेरे से वजन उठाया नहीं जाता, बाबा कहता बच्चे सारा वजन मुझे दे दो, जो भी तन मन धन का वजन तुम्हारा कुछ भी पुराना है, मन वचन का जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, सब बोझ मुझे दे दो। सखा के रूप में बाबा कहता जो कुछ गलतियां किसको सुना नहीं सकते हो, सब अपने दोस्त के रूप में मुझे सब सुना दो। साजन के रूप में बाबा दैवी गुणों से सजा देता है। साजन क्या करता है? सजनी को गहने लेके आता है, कपड़े लेके आता है ना, तो वो साजन हमें दैवी गुणों से सजाता है, हमारा श्रृंगार करता है, सत्यता से श्रृंगार करता है, पवित्रता से श्रृंगार करता है, निर्भयता से श्रृंगार करता है ना, ऐसे ऐसे दैवी गुणों से हमारा श्रृंगार करता है बाबा। अंतर्मुक्ता, एकाग्रता, एक नामी, व्यर्थ से इकोनॉमी, एक रस्थिति, सरलता, नम्रता, उदारता, मधुरता, धैर्यता, गंभीरता, रमणीकता, सहनशीलता, दृढ़ता, संतुष्टता, हर्षित मुक्ता, ऐसी आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमान बरदार, ऐसे एक एक का बहुत गहरा डिस्क्रिप्शन और इसकी अनुभूति हो सकती है, किंतु मैं तो जस्ट आपको नाम सिर्फ रिवाइज करके दे रहा हूं, फिर आप इसकी गहराई में जा सकते हैं, है ना। दैवी गुणों की गहराई में ही आप चार घंटा योग कर सकते हैं, एक एक दैवी गुणों की गहराई में जाओ, चार घंटा पता ही नहीं देता कहां चले गए, ऐसी स्थिति में रह सकते हैं। तो ये जो है बाबा साजन के रूप में सजाता है, और सज्जन के रूप में जो आत्मा को पांच कीड़े लगे हैं, आत्मा को पांच कीड़े लग गए हैं, कौन कौन से? काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार का कीड़ा लगाओ, सज्जन के रूप में उन कीड़ों को निकालता है बाबा, अंदर से गहरे बैठ गए, हमारी कॉन्शियसनेस में घुस गए हैं पांच कीड़े, बार बार अंदर देखो निकालो, फिर घुस जाते हैं, बार बार निकालो फिर घुस जाते हैं। तो जब हम परम धाम में ज्वालामुखी याद में बैठते हैं तो बाबा इनको ऑपरेशन करता है, निकालता है हमारे पास, सर्जन आत्मा की बीमारियों को निकालता है। आलस्य का संस्कार बहुत गहरा बैठ जाता है, कई बार आलस्य को निकालता है, अलबेलेपन को निकालता है, चिंता को निकालता है, भय को निकालता है, मैंने बताया 10 संस्कार जो अंदर बैठ गए उनको निकालता है, और बच्चे के रूप में सब जिम्मेवारी ले लेता है, वारिस है ना, उस पर सब कुछ हम बलिहार कर देते हैं। तो ऐसे एक एक संबंध की अनुभूति है ना। और डी फॉर ड्रामा, संसार एक नाटक है, इस नाटक में हर आत्मा एक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट प्ले कर रही है और मेरा बीठा बाबा इसका डायरेक्टर है, कर्म सिद्धांत के अनुसार एक्यूरेट डायरेक्शन दे रहा है। अगर कोई मुझे दुख दे रहा है तो ये समझो मैंने इसको दुख दिया हुआ है, किसी ने मुझे धोखा दिया तो ये समझो मैंने धोखा दिया हुआ है इसलिए मुझे वापस मिल रहा है, कोई बीमारी आई है तो ये समझो मेरे अपने किए हुए पाप कर्म है, कोई व्यक्ति इसके लिए जिम्मेवार नहीं है कि इसने ऐसा किया तो इसलिए मैं बीमार हूं। कई लोग हमारे पास हार्ट के पेशेंट आते ना, कहते डॉक्टर साहब बस इनके कारण मेरे को हार्ट की बीमारी हुई है, मेरे को इस बच्चा मेरा बच्चा कहना नहीं मानता इससे हार्ट की बीमारी हो गई, मेरी युगल ऐसा करती है, मेरा युगल ऐसा करता है इसलिए मुझे हार्ट की बीमारी हो गई, इसके कारण नहीं, मेरे अपने किए हुए कर्म, पाप कर्म, कोई बीमारी भी होती है मुझे मेरे अपने किए हुए पाप कर्म जिम्मेवार है। और उसका अल्टीमेट इलाज, हर बीमारी का इलाज है अपने पाप कर्मों का बाबा की याद से विनाश करना, भस्म करना, जैसे जैसे भस्म होंगे बीमारी हल्की होती जाती है, हर बीमारी की दवा मेरा बाबा है ना, एक बार याद होगा बाबा ने एक मुरली चलाई थी लास्ट ईयर, मेरा बाबा, हर बीमारी की दवा मेरा बाबा, इसकी गहराई से अनुभूति है ना। तो ये इसलिए अभी तक जो हुआ है अच्छा हुआ है, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होने वाला बहुत अच्छा होना, जैसे इन चार शब्दों की अनुभूति इसको रिवाइज और रियलाइज करते हैं, इनको एबीसीडी को, इस ज्ञान को रिवाइज और ये मुरली भी क्या है, ये एबीसीडी ही है, अर्थात इस मुरली को जितनी बार हम रिवाइज करते हैं रियलाइज करते हैं उतना हमारी बुद्धि पवित्र होती जाती है, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा, जो होने वाला बहुत अच्छा, जो हो रहा है क्या अच्छा हो रहा है, जो हुआ अच्छा कैसे हुआ, उसमें मेरे सिर पे बोझ था कम हो गया, अभी क्या अच्छा क्या हो रहा है, अभी तो बाबा की गोद में बैठा हूं, बाबा मुझे राजयोग सिखा रहा है, बाबा हर कदम मेरे साथ है, मैं बाबा के साथ हूं, बाबा मेरे साथ है, हर समय यह अनुभूति है, रात को भी सोते हुए, दिन में भी चलते हुए, हर काम करते हुए बाबा मेरे साथ है, इससे अच्छा क्या हो सकता है, भगवान मेरे साथ है, और जो होने वाला है क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, अभी हम फरिश्ता बनके सारे विश्व की सेवा करेंगे और उसके बाद सोने हीरे जवाहरात के महलों में रहेंगे और क्या होगा, कभी कम से कम 2500 साल कमाना नहीं पड़ेगा, सिर्फ पिकनिक मनानी पड़ेगी, खाना पड़ेगा और सोना पड़ेगा, ठीक है, डांस करेंगे बस, और कुछ भी नहीं करना है, इससे अच्छा क्या होगा, कुछ होगा अच्छा, तो बढ़िया ही बढ़िया होने वाला है। तो ये नशा हर समय, ये चिंतन, तो जिसको बार बार मनन माना रिवाइज करना, चिंतन माना अपनी चिंता अंदर लगा देना कि बाबा कहता है बच्चे ऐसा बनो और मैं अभी भी ऐसा हूं, मुझे ऐसा बनना है। मंथन माना उसको घोटना, घोटना माना उसका रियल अर्थ निकालना। अब देखो मैं आपको एक मुझे मैं आपको मुरली का किस्सा, मैं कैसे मंथन करता हूं, मनन चिंतन मैं आपको बताता हूं। अभी पीछे एक मुरली चली थी, बाबा ने कहा बाबा स्वीट का पहाड़ है, याद है, बाबा मीठे बच्चे, बाबा स्वीट का पहाड़ है और तुम्हें मोस्ट स्वीटेस्ट बनना है, बाप समान मोस्ट स्वीटेस्ट बनना, इसका क्या अर्थ हुआ, स्वीट का पहाड़ क्या होता है। तो चिंतन मनन चिंतन रिवाइज करता रहा, मन मन में वॉकिंग करता रहा, मनन चलता रहा, फिर चिंतन किया, फिर मंथन किया, तो इसका अर्थ मैंने बाबा से पूछा, मनन करते करते जब मगन हो जाते हैं हम, जब मनन करते करते मगन हो जाते हैं तो बाबा से हमारी तार जुड़ जाती है, तार जुड़ने से क्या होता है, क्या बाबा से बातचीत कर सकते हैं। तो मैंने कहा बाबा ये स्वीट का पहाड़ क्या चीज होती है, तो बाबा ने कहा बच्चे स्वीट का पहाड़ कुछ और नहीं, ये सात जो गुण है ना, ये सात गुणों का बाबा सागर है, ये है स्वीट का पहाड़। तो सात गुण जो ज्ञान पवित्रता शांति प्रेम सुख आनंद और शक्तियों का सागर है बाबा, तो मतलब स्वीट का पहाड़ है, ये सतो प्रधानता ही स्वीटनेस है। तो मोस्ट स्वीटेस्ट माना जब हम सातों गुणों में सतो प्रधान हो जाते हैं, भर जाते हैं, सतो माना सात, प्रधान माना भरपूर, तो ये जब हम सतो प्रधान हो जाते हैं तो इसको ही हम स्वीट मोस्ट स्वीटेस्ट स्थिति कहते हैं, यही है मीठापन। बाबा कहते हैं मीठा बनो, बहुत मीठे बनो, बहुत मीठे का क्या मतलब है, क्या मतलब मीठे का मतलब, सत्व प्रधान। तो इस तरह से जब मंथन करते ना समझ में आ गया, अब मीठा शब्द जब बाबा बोलता है मीठा माना सत्व प्रधान, और सत्व प्रधान माना ही पावन है, सत्व प्रधान स्थिति ही पावन है। पवित्रता कुछ और नहीं है क्या, पवित्रता क्या चीज है, सत्व प्रधान सातों गुणों में भरपूर हो जाना ही पवित्रता है, यही पावन स्थिति है। पतित क्या स्थिति है, तमो प्रधानता ही पतित स्थिति है। जब ज्ञान की बजाय ज्ञान हमारी बुद्धि में आ जाता है, शांति की बजाय शांति आ जाती है, रूहानी प्रेम की बजाय फिजिकल प्रेम की फीलिंग आती है, दैहिक प्रेम लगाव झुकाव प्रभाव या टकराव की फीलिंग आती है, अतिंद्रिय सुख की बजाय खाने का सुख देखने लगते हैं, खाने का सुख देखने का सुख सुनने का सुख बोलने का सुख छूने का सुख देखते हैं, और आनंद की बजाय फिजिकल चीजों में आनंद लेने लगते हैं, और शक्तियों की बजाय जिम्नेजियम में जिम में जाने लगते हैं, मसल्स बनाने लगते हैं, तो वो है तमो प्रधानता, वो है पतितपना, उससे दुख आता है, इससे सुख आता है। तो ये सत्व प्रधानता आत्मा, तो जब हम एबीसीडी को रिवाइज करते हैं, रियलाइज करते हैं, विजुअलाइज नहीं करना है, विजुअलाइज इन आंखों से किया जाता है, जो इन आंखों का देखा हुआ विजुअलाइज किया जाता है, रियल नहीं है, क्योंकि जो अलौकिक है वो इन आंखों से देख नहीं सकते हैं, ना सूक्ष्म वतन देख सकते हैं, ना परमधाम देख सकते हैं, ना आत्मा देख सकते हैं, ना परमात्मा देख सकते हैं। विजुअलाइज राइट वर्ड नहीं है, इमेजिनेशन राइट वर्ड नहीं है, बाबा ने ये वर्ड कभी इस्तेमाल नहीं किए, बाबा कहते हैं बच्चे रियलाइज करो, रियलिटी को रियलाइज करो, सत्यता को रियलाइज करो, तो वो रियलिटी को रियलाइज करो, जितना उसको रियलाइज करते, तो मनन चिंतन मंथन, और जो मंथन कर लिया फिर उसका सिमरण करते रहो, घोटते रहो, जैसे जैसा हम करते हैं हमारी बुद्धि पवित्र होती जाती है, उस पवित्रता से विचार कम होने लगते हैं, उसे शांति कहते हैं। तो शांति मन में मतलब विचार कम हो गए, शांति आने लगती है, शांति जब आने लगती है तो शांति से रूहानी प्यार पैदा होता है, अर्थात हमारे विचार जब 15 की बजाय 8 हो जाते तो शांति महसूस होती है, और जब 6 विचार हो जाते हैं लगभग, जिसे हम थीटा रिदम कहते हैं, 8 को अल्फा कहते हैं और 6 को थीटा कहते हैं, इसको वैसे इंग्लिश में अल्फा रिदम को पीसफुल रिदम कहते हैं और थीटा रिदम को लवफुल रिदम कहते हैं। जब स्पीड कम हो जाती है तो हमें ये रियलाइज होने लगता है कि जैसे मुझे केयर की आवश्यकता है, लोग मेरी देखभाल करें, लोग मेरी केयर करें, लोग मुझे रेस्पेक्ट करें, ऐसे मुझे दूसरों की भी रेस्पेक्ट करनी है, मुझे भी दूसरों की केयर करनी है, अनकंडीशनल केयर करनी है, अनकंडीशनल माना निस्वार्थ भाव से उनकी देखभाल करनी है, उनको आदर देना है, रेस्पेक्ट देना है, इसको ही रूहानी प्यार कहते हैं, यही है रूहानी प्यार। इस रूहानी प्यार से अतिंद्रिय सुख की अनुभूति होती है, अतिंद्रिय सुख माना इंद्रियों से ऊपर का सुख, एक इंद्रियों वाला सुख होता है, देखने का सुख, बोलने का सुख, खाने का सुख, सुनने का सुख, छूने का सुख, ये इंद्रियों का सुख है, अतिंद्रिय आत्मा का परमात्मा से मिलन का सुख, ये सुख के मैं आत्मा अविनाशी हूं, मरने वाली नहीं हूं, ये सुख के मैं आत्मा कभी बूढ़ी नहीं होंगी, ये सुख के मैं कभी आत्मा बीमार नहीं हो सकती, ये अतिंद्रिय सुख है। इस अतिंद्रिय सुख की अनुभूति से आनंद की अनुभूति होती है, अर्थात जब हमारे 4 विचार रह जाते हैं, खाली एबीसीडी के अलावा कुछ आता ही नहीं बुद्धि में, एबीसीडी बस आत्मा बाबा कनेक्शन ड्रामा, तो हमारे सिर्फ हम अतिंद्रिय सुख की अनुभूति में चले जाते हैं। जब सिर्फ 2 विचार रह जाते हैं, आत्मा और बाबा, मैं बाबा का बाबा मेरा, तो यह आनंद की स्थिति है, अर्थात हम सूक्ष्म तन में बाबा की गोद में होते हैं, और जब खाली बाबा रह जाता है, जब आत्मा बाबा के प्यार में लवलीन हो जाती है, समा जाती है, उसमें एक रस टिक जाती है, तो वो स्थिति है सर्वशक्तिमान स्थिति, मास्टर सर्वशक्तिमान की स्थिति, अर्थात आप आत्मा परम धाम में पहुंच जाते हैं, अर्थात सिर्फ ज्योति बिंदु की अनुभूति रहती है, और वो ज्योति बिंदु की स्थिति मैं बस यही फील रहता है, मैं अति सूक्ष्म ज्योति, सब हर चीज की बिंदु लग जाता है, हर चीज का बिंदु, कोई मन में संकल्प उठता ही नहीं, कोई हर संकल्प से परे चले जाते हो, तो वो है परम धाम की बीज रूप स्थिति। इस बीज रूप स्थिति में विक्रम विनाश होते हैं, अर्थात विक्रम विनाश होना माना जो कुछ भी हम कर्म कर रहे हैं, देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बोल रहे हैं, खा रहे हैं, हाथों से कर्म कर रहे हैं, पैरों से कर्म कर रहे हैं, अगर विकारों के वश कर रहे हैं तो वो पाप कर्म है, और हर पाप कर्म विकारों के वश देखना, विकारों के वश बोलना, विकारों के वश खाना, विकारों के वश सुनना, विकारों के वश कोई भी कर्म करना आत्मा की बैटरी को डिस्चार्ज करता है और साथ साथ ही रिकॉर्ड हो जाता है, और यही है पाप कर्म, क्योंकि ये रिकॉर्ड हो जाता है, और जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने आता है, भले 10 साल के बाद आए, 20 साल के बाद आए, 40 साल के बाद आए, वो फाइल खुल जाती है, वो फाइल खुलने के बाद वही पाप वापस हो जाता है। किसी से गुस्सा किया हो 20 साल पहले, 20 साल में सामने मेरे सामने नहीं आया, गुस्सा मैंने किया ही नहीं 20 साल से, अभी ज्ञान में चल रहा हूं 20 साल से, आज वो व्यक्ति मेरे सामने वापस आ गया, उसको देखते ही फाइल खुल गई और फिर वापस गुस्सा आ गया, ये है पाप कर्म। ये फाइल डिलीट कैसे हो, जब आप उस एक संकल्प की स्थिति में पहुंच जाते हैं बाबा, और बाबा में भी खो जाते हैं, तो सिर्फ आपको बाबा ही नजर आता है, बाबा माना बस मैं ज्योति हूं, बाबा ज्योति है, बस ये और कुछ भी नहीं, लाल रंग का प्रकाश नजर नहीं आता है, ठीक है ना, कई लोग कहते हैं लाल रंग का प्रकाश है वहां पर, ऐसा कुछ नजर नहीं आता है ना, क्योंकि देख ही नहीं सकते, अनुभूति सिर्फ शक्तिशाली स्थिति की होती है, शक्तिशाली स्थिति माना ही लाल रंग का प्रकाश बोल देते हैं, किसको लाल रंग का प्रकाश अनुभव होता है हाथ उठाओ, वो विजुलाइज करते हो आप, ठीक है, वो रियल नहीं होता है, ठीक है, वो विजुलाइज इमेजिन करते हो लाल रंग का प्रकाश, चित्र में देखा होता है ना, जो चित्र में देखा हनुमान भी नजर आता है चित्र में देखो तो बाद में, है ना, वो रियल नहीं है, हनुमान होता है क्या, हनुमान होता है क्या, होता ही नहीं है, गणेश होता है क्या, होता ही नहीं है ना, हम ही गणेश है, हम ही हनुमान है, कहां है मेरी ना सूंड, है सूंड क्या, है ना, वो तो जो कुछ हम आंखों से चित्र देखते हैं वो दिखाई दे जाता है, ठीक है, तो वो शक्तिशाली स्थिति का परिचायक है लाल रंग, है ना, तो ये अनुभूति होना यही है बीज रूप स्थिति। और उसमें क्या होता है, जो हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज होती हैं विकारों की, काम विकार की मेमोरी क्या है 40-45, आदमी पागल विकारों में, पागल काम विकार में, पागल क्रोध में, पागल कहते हैं मदमस्त हाथी के रूप में आदमी चलता है, ये विकार हमको पागलपन की तरफ ले जाते हैं, 45 माना पागल, तो क्रोध में पागल, लोभ में पागल, मोह में पागल, अहंकार, ये हाई फ्रीक्वेंसी मेमोरीज हैं, वो डिलीट होने लगती हैं, अर्थात जिसके साथ भी हमने काम विकार में, क्रोध में, पिछले जन्मों में, लोभ में, अहंकार में, मोह में आके जो कर्म किए वो मेमोरीज डिलीट होने लगती हैं। और हमने मान लीजिए 1,00,000 बार अभी तक क्रोध किया है, ना जाने 10,00,000 बार किया हो, 50,00,000, पता नहीं फिर ऐसा जन्म कितनी बार किया होगा, हम इस जन्म में 1,00,000 बार हो जाता है ना, अगर आप काउंट करो तो इस जन्म में कितनी बार कर लिया होगा अभी तक, काउंट करो, काउंट कर सकते हैं आप, तो 1,00,000 बार उसको डिलीट भी करना पड़ता है, जैसे SMS खोलो ना, SMS खोलो फिर डिलीट करो, SMS खोलो फिर ऑल मैसेज डिलीट नहीं होते हैं, उस मोबाइल में हो जाते हैं ऑल मैसेज डिलीट, एक बटन दबाने से डिलीट हो जाते हैं, यहां पर ऐसा नहीं होता, यहां SMS खुलता है फिर डिलीट होता है, SMS खुलता है फिर डिलीट होता है, SMS खोल के डिलीट होता है, एक साथ डिलीट नहीं होते। तो ये कहें ना, हम लोग जन्म बाई जन्म हमें विकार विकार अपने सारे विकर्म हमें डिलीट करने पड़ते हैं। अब 84वां जन्म है, पहले 84 जन्म के डिलीट करो, फिर 83वां जन्म शुरू होगा, 83 के डिलीट करो, फिर 82 के डिलीट करो, और फिर 81 के डिलीट करो, फिर 80 के डिलीट करो, ऐसे करते करते हम 21 तक जाना है। और हर जन्म में भी 3 फेज हैं, बचपन, जवानी, बुढ़ापा। बचपन और बुढ़ापे में विकार नहीं होते हैं, कम होते हैं, इसलिए हमारी स्टेज अच्छी रहती है। जवानी में विकार होते हैं, जब हम रिटर्न जर्नी है ना, तो हमारी देखो आज अवस्था बहुत अच्छी, आज मेरा बहुत अच्छा योग लगा, दो दिन बहुत अच्छा योग लग रहा है, तीसरे दिन भी अमृत वेला अच्छा किया, मुरली भी की, सब कुछ कर रहा हूं रेगुलर, पर योग की स्थिति डाउन हो जाती। क्यों डाउन हुई? क्योंकि वो टाइम अब मेरे सामने आ गया जो मेरे उस जन्म के, मान ली 26वें जन्म का मेरा कोई विकार वाला पीरियड था ना, जवानी वाला पीरियड, वो चल रहा है अभी दो दिन, तीसरे दिन वो डिलीट हो जाएगा, चौथे दिन फिर वापस अच्छी स्थिति बन जाएगी। इसलिए ब्राह्मणों कभी एक रस अवस्था नहीं होती, होती है कभी एक रस अवस्था? नहीं होती, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी नीचे कभी ऊपर, है ना, क्योंकि बुढ़ापे में अच्छा योग लगेगा उस जन्म के, फिर जवानी में गड़बड़, फिर बचपन आएगा, फिर अच्छा, फिर 25वें जन्म का फिर बुढ़ापा आएगा, फिर अच्छा, फिर 25वें जन्म जब जवानी आएगी फिर खराब, किंतु जब 21वां जन्म आ जाएगा तो बढ़िया हो जाएगा। किंतु याद रहे ये चार नियम और चार मर्यादाएं, जो इनको सच्चे दिल से पालन करता है, कभी इसमें कोताही नहीं करता है, वो उसकी जर्नी स्मूथ होती है। स्मूथ माना वो 84वें जन्म से लेकर 21 जन्म तक बिना चोट के पहुंच जाता है। और जो व्यक्ति कहीं ना कहीं इन चार नियम और चार मर्यादाओं में गड़बड़ कर देता है, वो किसी ना किसी जन्म में फंस जाता है, जैसे वो सांप काट लेता है। अगर 35वें जन्म में गलती कर दी तो वापस कहां पहुंच जाता है? 84वें जन्म में पहुंच जाता है, फिर दोबारा से फाइलें खुल जाती हैं सारी, फिर 84 से वापस 83, 82, 81 पहुंचो, फिर 61 में पहुंचे, फिर सांप ने काट लिया, वापस 84। समझ रहे कैसे विक्रम विनाश होते हैं? समझ में आ रही है बात? ही तो हमको ये अटेंशन, इसलिए मैंने शुरू में कहा ये चार नियम, कुछ भी हो, कैसी भी स्थिति हो, सामने घर में कुछ भी हो रहा हो, ऑफिस में कुछ भी हो रहा हो, पर्सनल लाइफ में कुछ भी हो रहा हो, कभी अमृत वेला करना मत छोड़ो, कभी मुरली सुनना मत छोड़ो, कभी सारा दिन अटेंशन रखना मत छोड़ो। दिन में कम से कम 21 बार मुरली रिवाइज करो। कितनी बार? मुश्किल लगता है ना 21 बार? कम से कम 4-5 बार तो ऐसे मुरली पढ़नी चाहिए। ये तो नोट करके फिर थोड़े पॉइंट्स है ना, अमृत, मीठे बच्चे, स्लोगन, वरदान, प्रश्न, धारणा के लिए मुख्य सार, एक एक लाइन बीच में निकाल लो, जेब में रखो लिख के वो कागज, और ये लव लेटर ना, बाबा का लव लेटर है ना, ये मुरली नहीं है, क्या है बाबा का? अपनी सजनी के लिए क्या है? लव लेटर। लव लेटर कहां रखते हैं? प्रेम पत्र कहां रखते हैं? कहां पे रखते हैं? दिल के पास, है ना। और किसको दिखा के नहीं पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? ऐसे छुपा के एक लाइन पढ़ के मुस्कुराते हैं, फिर जेब में रख लेते हैं, छुपा के, है ना, नहीं तो ऐसे पढ़ते हैं। तो जितनी बार इस मुरली के पॉइंट रिवाइज करते हैं, 21 बार तो मैं कम कहता हूं, है ना, 21 बार तो 21 जन्म का राज्य भाग लेना, इसलिए कहता हूं, नहीं तो श्वासों श्वास मुरली के पॉइंट से याद रहना चाहिए, श्वासों श्वास पे मनन चिंतन चलना चाहिए। तो इस आधार पे ही हमारा पद बनता है। तो जितना हम मुरली को बार बार रिवाइज रियलाइज करते जाते हैं, हमारी स्थिति अच्छी होती जाती है। तो जितना, और इससे जो है हमारी, तो मैं इस बात पे था ना कि कैसे हम अपने आप को, तो अमृत वेला मुरली जितना बार करते जाएंगे हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाएगी, और उतना अधिक हम आनंद की अनुभूति, सुख की अनुभूति, सुख आनंद और शक्तियों की अनुभूति। और ये जो स्थिति है अत्यंत सुख की अनुभूति, फरिश्ता स्थिति है। चार से नीचे की स्थिति फरिश्ता स्थिति है, आनंद की और सुख की अनुभूति फरिश्ता स्थिति है। अर्थात तब हमें अपने स्थूल देह का भान ही फील नहीं होता है, ऐसा फील होता है जैसे हम उड़ रहे हैं, देह है ही नहीं, देह बिल्कुल हल्की लगती है, शरीर में कोई रोग हो तो रोग की फीलिंग नहीं आती है। और विक्रम विनाश जब होते हैं तो उस विक्रम विनाश की निशानी क्या है? कल जिस व्यक्ति से मैंने, कल क्रोध हुआ था, जिस व्यक्ति से क्रोध आया था, उस व्यक्ति को आज मैंने जब मिला मुझे व्यक्ति, तो व्यक्ति से तक क्रोध की फीलिंग ही नहीं आई, भूल ही गया इस व्यक्ति ने कल मुझे क्या बिहेव किया था। मैं उसको आत्मा रूप में देख रहा हूं, मैं उसको मुस्कुरा रहा हूं, उसको देख के, भले वो आज भी गाली दे रहा है, मैं मुस्कुरा रहा हूं, मुझे जरा भी फीलिंग नहीं है कि ये क्या कह रहा है, समझ रहे हैं? इसका मतलब मेरा उससे विक्रम विनाश हो गया। क्रोध या लोभ या मोह या काम, कोई भी इच्छा, कोई भी विकार कांश हो, आज खत्म हो गया। तो इस तरह से सिर्फ अमृत वेला ही विक्रम विनाश हो सकते हैं, इसलिए अमृत वेला करना बहुत आवश्यक है। और एक बात और, सबसे ये देखने में आया, अगर हम बाबा, और जब हम कोई गलती करते हैं तो हमारी गलतियां सबसे पहले उठते ही जब अमृत वेला योग करने बैठते हैं ना, वो गलती याद आती है। अगर रोज सोने के पहले बाबा से माफी नहीं ली ना, तो फिर क्या होता है, सबसे पहले उठते ही वो याद आती है। और कई बार तो मैं, मेरा अपना अनुभव है, वो अनुभव क्या है, मैं जब अमृत वेला योग करने बैठता हूं, जो सारा दिन में गलती हुई, वैसे तो मैं हमेशा लेटर लिख के सोता हूं, चार्ट भर के, आज तक मेरा 16 साल हो गए मुझे जब से कैट ड्रॉम शुरू हुआ, तब से मैंने आज तक लेटर हमेशा चार्ट, लेटर लिखना और चार्ट बनना कभी नहीं छोड़ा। तो चार्ट कभी बाय चांस अगर पूरा लेटर ना लिखा जाए, ढंग से ना कोई बात रह जाती है, तो मुझे क्या होता है, बाबा के सामने जब जाता हूं तो बाबा जैसे मुझे गोदी में नहीं लेगा, प्यार नहीं करेगा। फिर मैं बाबा से बात करूं, बाबा को वहीं खड़े खड़े दूर, मैं खड़े खड़े ऐसे करूंगा, बाबा एकदम मुझे याद आ जाएगा कल वो गलती हुई थी, कल मैंने उसके साथ ऐसा बोला था, या मैंने उसके साथ थोड़ा सा आंख दिखाई थी, आंख दिखाई मत, आंख दिखाई समझ समझे ना, गुस्सा नहीं किया, किंतु मैंने थोड़ा सा ऐसा किया कि इसको टाइट होके मैं दिखाऊं, तो वो बाबा दिखाई, बच्चे तुझे ऐसे करना चाहिए था क्या, तुम अपने आप को ब्राह्मण कहते हो ऐसे करते हैं क्या, बेहद की बात करते हो और तुम आंख दिखाते हो। तो बाबा नहीं, बाबा आगे से नहीं करूंगा, फिर बाबा गोदी मिलेगा। तो ये जो है सचमुच में, इतना सच्ची दिल, साफ दिल बन, जब हम बन जाते हैं तो बाबा गोदी में लेके प्यार करता है, बाबा से हमारी तार मिल जाती है, यही हमारी वॉइसलेस तार है, है ना, वॉइसलेस माना कि बाबा और मैं, बाबा और मैं, मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा ना कोई। जब ये स्थिति होती तो बाबा से हमारी संकल्पों से बातचीत होती है, और यही अंत में हमारी स्थिति होगी जब हम, जब हमारी वॉइसलेस तार काम करेगी, ना मोबाइल काम करेंगे, ना टेलीफोन काम करेगा, ना टेलीविजन काम करेगा, इसी से हमें टचिंग होगी, इसी के द्वारा हम ब्राह्मण आपस में बातचीत करेंगे, एक दूसरे की मदद करेंगे, ये वॉइसलेस सिस्टम काम करेगा, वायरलेस सिस्टम काम नहीं करेगा, मोबाइल काम नहीं करेंगे। तो ये हमारी संपूर्णता जब हमारी अंदर आएगी, तो जैसे जैसे हमारे विक्रम विनाश होते जाएंगे, और जब हम 21वें जन्म के पास, 21वें जन्म में पहुंच जाएंगे, तो हमारी एकरस स्थिति, सारे विक्रम विनाश हो जाएंगे, तब हमारी एकरस फरिश्ता स्थिति आ जाएगी। और जिस दिन हम सब 21वें जन्म में पहुंच जाएंगे, उस दिन विनाश शुरू होगा, क्योंकि हम, बाबा ने कहा जब सबके, सबका मन हल्का हो जाएगा विनाश के बारे में, तब विक्रम, तब विनाश होगा, मतलब तब हम जब विनाश की बात ही भूल जाएंगे कि विनाश होने वाला है, जब हमारे विक्रम विनाश होंगे, तो हमें तो सत्युग नजर आएगा ना, चलते फिरते सत्युग के सीन सिंधिया नजर आनी शुरू हो जाए, क्योंकि हम सत्युग की स्टेज में, हम त्रेता की स्टेज में पहुंच जाएंगे, हमें त्रेता दिखाई देना शुरू हो जाएगा, अपने त्रेता के महल नजर आने शुरू हो जाएंगे, त्रेता की सीन सिंधिया दिखाई देनी शुरू होगी, फिर हम दैवी गुणों की धारणा में अटेंशन रखेंगे, और धीरे धीरे हम 12वें 8वें जन्म में पहुंच जाएंगे, सत्युग के सीन सिंधिया दिखाई देनी शुरू हो जाएंगे, तब तक किस उस स्थिति में हम अपने फरिश्ता स्थिति से सब लोगों की सेवा करेंगे, जो दुखी अशांत आत्माएं होंगी उनकी सेवा करते रहेंगे, उनको हमारे साक्षात्कार होते रहेंगे, इष्ट के रूप में, फरिश्तों के रूप में साक्षात्कार होते रहेंगे, बाबा का हमारे मस्तक से साक्षात्कार उनको होता रहेगा। तो यह स्थिति, तो जितना ज्यादा हम ABCD अर्थात ये बाबा की मुरली को रिवाइज और रियलाइज करते जाएंगे, उतना ही अधिक हमारी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी। तो चार मर्यादाएं, चार परहेज कौन से हैं? पहला है पवित्रता। पवित्रता माना, जैसे बताया, मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क को सोपन तक भी पवित्रता, अर्थात सत्यता। सत्यता माना अपने अनादि आदि ओरिजिनल पावन सत्व प्रधान स्थिति में स्थित होकर हर संकल्प बोल और कर्म करना। संबंध संपर्क में आना, सोपन में आना, किसी बुराई व अवगुण को संकल्प बोल व कर्म से टच भी ना करना। पवित्रता माना सत्यता, अर्थात अपने सत्य स्वरूप में स्थित रहना, हमारा सत्य स्वरूप कौन सा है? अनादि और आदि। ये जो है ना हमारा द्वापर और कलयुग वाला स्वरूप जो है हमारा सत्य स्वरूप नहीं है, ये तो शूद्रों का स्वरूप है, रावण का स्वरूप था, उसको नहीं याद करना, ये हमको गहराई से समझना है। फिर सत्यता, फिर इसके बाद पहली पवित्रता का और गहराई से, इवन व्यर्थ संकल्प करना भी अपवित्रता है। तो जितनी जितनी हमारी पवित्रता की डिग्री बढ़ती जाएगी उतना उतना बाबा से, उतना उतना हमारा अमृत वेला पावरफुल होता जाएगा, उतना उतना हमारी मुरली बुद्धि में बैठती जाएगी, उतना उतना हमारा सारा दिन अटेंशन रहेगा, और उतना ही गहराई से हम अपना लेटर सच्चाई से बाबा को दे सकेंगे, पोतामेल सच्चाई से दे सकेंगे। नहीं तो पोतामेल भी हम झूठा लिखते हैं, चार्ट भी झूठा लिखते हैं, किसी को दिखाना नहीं हो तो भी झूठा लिखते हैं, किसके लिए झूठा लिख रहे हैं पता नहीं, किसको दिखाने के लिए लिख रहे हैं वो भी गलत पता नहीं है। फिर शुद्ध अन्न, बाबा की याद में भोजन बनाना, बाबा की याद में खाना। जब खाना खाते हैं तो अपनी प्लेट लेके कहां चले जाना चाहिए? सूक्ष्म वतन में चला जाना चाहिए, ठीक है? तो बाबा मुझे खिलाए, मैं बाबा को खिलाऊं, यह है शुद्ध अन्न खाना, शुद्ध सात्विक अन्न खाना। सात्विक माना सात गुणों को बढ़ाने वाला, सात्विक माना आसक्ति में नहीं खाना, अनासक्त होके खाना। आज चपाती बहुत अच्छी बनी, सब्जी बहुत अच्छी बनी, तीन चपाती खा ली, चार खा ली, आज अच्छी नहीं है तो एक ही खाई, ये शुद्ध अन्न नहीं है, सात्विक अन्न। पराठा पकोड़ा समोसा मिठाइयां खाना ये सात्विक नहीं, राजसी करना, इससे इससे हमें आलस्य, हमें आलस्य पैदा होगा, अलबेलापन पैदा होगा। लहसुन प्याज की तो हम बात ही नहीं करते, वो तो खाना ही नहीं होता हमको, लहसुन प्याज है, बासी पदार्थ खाना है ना, बहुत मिर्चों वाला खाना, अचार खाना है ना, अचार खाते ना, ये तामसिक कहलाते हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं। बहुत चाय कॉफी पीना, कोल्ड ड्रिंक पीना, ये सब तामसिक पदार्थ हैं, उत्तेजना पैदा करते हैं, हमारे अंदर विकार जागृत करते हैं, ठीक है? तो शुद्ध सात्विक अन्न का भोजन है ना, ये नहीं कहना है मशीन का बना हुआ बिस्किट है, मशीन की बनी आइसक्रीम है खा लो, चाहे मशीन की बनी कॉफी है पी लो, कोई बात नहीं, ये अपने आप को धोखा देना है, ठीक है? तो जितनी शुद्धता हमारे अन्न में आती जाएगी उतना हमारा बाबा से अमृत वेला पावरफुल होगा, मुरली पावरफुल होगी, और अटेंशन रहेगा और लेटर अच्छा लिखा जाएगा। इसी तरह से फिर सत्संग, अर्थात एक बाबा और मुरली का संग, और किसी का संग नहीं। जब हम एबीसीडी की बात करते हैं, एबीसीडी जब हम खाली एबीसीडी करो, ई और एफ मत करो, ई माना एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा माना जो ब्रह्मा बाबा ने नहीं किया उसके अलावा कुछ मत करो, जो ब्रह्मा बाबा ने किया सिर्फ फॉलो फादर करो, किसी और की मत, किसी और की मन मत परमत में मत जाओ। वो गुरु ने ये कहा, हम कोई मुद्रा लगा लो, कोई प्राणायाम कर लो, कोई और कोई हम क्रिया कर लें, नहीं, एक बाबा मेरा सर्जन है उससे पूछो बाबा क्या कहता है, बाबा क्या क्या प्रेरणा है, मेरी मुझे मुझे तकलीफ हो गई, मुझे हार्ट की तकलीफ हो गई, मुझे सांस की तकलीफ है, मुझे सिर दर्द हो रहा है, बाबा से पूछो बाबा क्या मैं क्या करूं, बाबा बताएगा, बच्चे उस डॉक्टर के पास चले जाओ, दवाई ले लो, दवाई ले लो, बच्चे ऐसे कर लो, बच्चे ठीक हो जाओ, बच्चे ऐसे ऐसे स्थिति में योग लगाओ ठीक हो जाओ। तो ये संग, एक बाबा के अलावा किसी का संग नहीं, बाबा और मुरली बस, तीसरा कुछ संग नहीं होना चाहिए। और एफ माना फोर्स, किसी को फोर्स मत करो, अपने कर्मों से परिवर्तन करो, बोल के परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है, स्पेशली अपने घर वालों को भी बोल ज्ञान मत सुनाओ ज्यादा, कर्मों से ज्ञान सुनाओ, कर्म करके दिखाओ। और फिर तो सत्संग और दैवी गुणों की धारणा, दैवी गुणों की धारणा माना ये जो दैवी गुण मैंने बताया ना, सत्यता पवित्रता निर्भयता अंतर्मुखता एकाग्रता एकांतवासी सरलता नम्रता उदारता मधुरता, ये जीवन में लाओ। अगर याद रहे बाबा का बनने के बाद, अगर एक बार गुस्सा किया तीन दिन तक आपका योग नहीं लगेगा, जैसा योग चाहिए वैसा नहीं लगेगा, नीचे चले जाएंगे। एक बार उदास हो गए मूड ऑफ कर लिया पांच दिन तक योग नहीं लगेगा, एक बार जल्दी में आ गए 18 घंटे तक योग नहीं लगता है। किसी के प्रति दुश्मनी की भावना रख ली जब तक उसको माफ नहीं करोगे तब तक योग लगेगा नहीं अच्छा सा। तो कभी भी कोई विकार बाबा का बनने के बाद मत, टच मत करो, तो फिर हमारी स्थिति पावरफुल बनेगी। तो जैसा जैसा हम इस चार नियम चार धारणाओं में पक्के होते जाएंगे तो हमारा अमृत वेला पावरफुल विक्रम विनाश करने वाला, हम विक्रमाजीत बनते जाएंगे। विक्रमाजीत बनते जाएंगे तो कर्मातीत बनते जाएंगे, कर्मातीत बनते जाएंगे तो संपूर्ण बनते, संपूर्ण माना संपूर्ण हमारा ज्ञान की मूरत बन जाएंगे, संपूर्ण पवित्रता की मूरत, संपूर्ण शांति की मूरत, संपूर्ण रूहानी प्रेम की मूरत, संपूर्ण अतिंद्रिय सुख की मूरत, संपूर्ण आनंद की मूरत और संपूर्ण शक्तियों की मूरत बन जाएगी। ऐसी स्थिति हमारी होगी, अर्थात सातों गुणों की मूरत सत्व प्रधान बनते जाएंगे। तो ऐसा जब हम करते जाएंगे तो हमारी स्थिति पावरफुल होती जाएगी। तो इस तरह से जब हम चार नियम चार मर्यादाओं और उतना जितना हम ये कैसे करते जाएंगे हमारी दिल सच्ची और साफ होती जाएगी। लेटर रोज लिखेंगे बाबा को, क्योंकि जब भी हम गलती करते हैं, मैंने एक गलती की मर्यादा से नीचे ऊपर किया, बोलने में देखने में सुनने में खाने में कोई कर्म करने में, तो मेरी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। मान लीजिए मेरी फ्रीक्वेंसी अभी 10 है या 6 है, मैंने गुस्सा किया कुछ थोड़ा सा किसको आंक दिखाई 10 हो गई, फिर एक और बार किया 15 हो गई, एक और किया 20 हो गई, एक और गलती की 25 हो गई, है ना, एक और गलती की 30 हो गई, और नींद माना 4 से कम, गैर नींद माना डेल्टा रिदम 4 से कम। तो 4 से कम होने के लिए मुझे 30 से 40, 4 से 4 पे कैसे आएंगे, एकदम आ ही नहीं सकते। तो नींद कच्ची होगी, सुबह अमृत वेला अच्छा होगा ही नहीं, सुबह अमृत वेला नींद आएगी। तो सोने के पे लेटर लिखे ना, जैसे बाबा को लेटर लिखते हैं, बाबा मेरे से आज गलती हुई, मैंने उसको आंख दिखाई, मैंने बाबा आज ये गलत खा लिया, बाबा मैंने आज ये खाते समय मेरी बुद्धि खाने में चलेगी, मैं आपको भूल गया। तो वो जब लिखते हैं तो हमारी गलती बाबा सुनता है ना जैसे ही, तो हमारी फ्रीक्वेंसी 25 से 20 हो जाती है। दूसरी गलती एक्सेप्ट करते 20 से 15 हो जाती है, तीसरी गलती एक्सेप्ट करते 15 से 10 हो जाती है, चौथी गलती एक्सेप्ट करते हैं तो क्या होता है 5 हो जाती है। क्यों, गलती करते समय गलती लिखते समय बाबा याद आता है ना, बाबा मैंने ऐसे किया, बाबा मैंने ऐसे किया, उसमें ही बाबा याद आता है ना। तो बाबा की याद से वो क्या है, गलतियां हमारी फ्रीक्वेंसी कम होती जाती है, और फिर जैसे हम संकल्प करते हैं बाबा अब मैं आपकी गोद में आ रहा हूं, आपको पता है हमारा बेडरूम कहां है, ये जो बेड होता है ना जिसपे हम सोते हैं, ये तो हमारा गैरेज है, गैरेज में ना बॉडी हमारी कार है ना, कार को गैरेज में पार्क कर दो फिर बाबा को याद करने बैठ जाओ। तो हमारा बेडरूम है सूक्ष्म वतन, और हमारा बेड कौन सा है, बाबा की गोद, है ना, एक सेकंड में बाबा की गोद में पहुंच। तो जब ऐसी स्थिति हमारी होती है तो क्या होता है, हम सूक्ष्म वतन में पहुंच जाते हैं, बाबा की गोद में सो जाते हैं। तो हमारी फरिश्ता स्थिति में जाके सोते हैं बाबा के पास, और बाबा को टाइम देते हैं, बाबा 3:30 उठा देना, बाबा 3 बजे उठा देना, एक्यूरेट 3 बजे उठा देगा, 3:30 बजे, 3:30 बजने से पहले आधा मिनट पहले उठाएगा, उसका गीत बाद में बजता है, कभी माइक कभी हमको वो लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्या कहते हैं वो अलार्म लगाने की आवश्यकता नहीं होती, है ना, इतना अच्छा सिस्टम बाबा बना के देता है, चाहे ट्रेन में हो चाहे प्लेन में हो चाहे कहीं पे भी हो। तो ऐसी स्थिति बनाने की, ये है संपूर्ण पवित्रता। तो इस संपूर्ण पवित्रता की जितनी गहराई में हम उतरते जाएंगे उतना अमृत वेला पावरफुल होगा, उतना मुरली अच्छी प्रिंट हो जाएगी, पहले पेज पे कौन सा, ये बाबा की मुरली में ज्ञान योग धारणा सब सेवा चार सब्जेक्ट होते हैं ना, तो पहले पेज पे बाबा ने ज्ञान की कौन सी बात बताई, योग की कौन सी बात बताई, धारणा की कौन सी, सेवा की कौन सी, सेकंड पेज में कौन सी बातें बताई, थर्ड पेज में कौन सी, चौथे पेज पे कौन सी बताई, एक एक बात बुद्धि में प्रिंट रहती है, तब हमारी स्थिति ऐसी होती जाएगी। ठीक है, तो ये बात क्लियर हुई आप सभी को। और मैं लास्ट में आपको प्योरिटी की, बाबा ने मैंने एक मुरली पढ़ी थी, लास्ट में मैं वो बात आपको बताता हूं 2 मिनट में, कि प्योरिटी की बाबा के यहां पर कंपटीशन होती है ऊपर सूक्ष्म वतन में, क्या कंपटीशन होती है उसमें, 5 बातें बाबा देखता है। पहला देखता है आत्मिक आत्मिक स्मृति का तिलक कैसा चमक रहा है, आत्मिक स्मृति में ना मैं आत्मा हूं, यह भी आत्मा है, हम सब आपस में आत्मा भाई भाई है, तो ये आत्मिक स्मृति का तिलक ये कितना चमक रहा है, कितनी कितनी से किरणें निकल रही हैं, कितनी दूर दूर तक लाइट जा रही है, तो पहली ब्यूटी इसमें देखता तिलक, आत्मिक स्मृति का तिलक मस्तक के बीच में। दूसरा बाबा देखता लाइट का क्राउन, तो जितना अधिक आत्मिक स्मृति का तिलक चमकता है उतना ही ज्यादा लाइट का क्राउन बड़ा होता है। तीसरी जो ब्यूटी होती है वो होती है नैनो में दूसरों को आत्मा देखने की नजर, दूसरों को फरिश्ता स्वरूप में देखने की नजर, देह ना देख करके, देह को देखते हुए देह को ना देख करके उनको फरिश्ता देखना, उनको आत्मा देखना। तीसरी ये बाबा देखता है। चौथी बाबा देखता है, बाबा देखता है होठों पे कौन सी मुस्कान है। आत्मा के और परमात्मा के महान मिलन की और सर्व प्राप्ति की मुस्कान इस व्यक्ति के इस बच्चे के चेहरे पे है कि नहीं, बच्चे के होठों पे है कि नहीं, ये चौथी बात बाबा देखता है। पांचवी बात बाबा देखता है मुख पे लाली कैसी है, किस चीज की लाली, बाप से मिलने की लाली, कलप के बाद बाप से मिलने वाले सुख की लाली। ये पांच बातें बाबा प्योरिटी कंपटीशन में देखता है, ठीक है। जिनका लाइट का ताज चारों तरफ सारे शरीर के आसपास फैला हुआ होता है, जिनका मस्तक रूपी तिलक चमक रहा होता है, आंखों में रूहानी नजर होती है, होठों पर सदा मुस्कुराहट रहती है, हर्षित मुख रहते हैं, चेहरे से हमेशा खुशी के वाइब्रेशंस दिखाई देते हैं, ऐसा बच्चा कौन है, वो फर्स्ट नंबर में होता है। सेकंड जो बच्चे होते हैं उनकी बाबा ने एक बार बताया था, इस मुरली में बताया था कि जो 100% सब 70% से ऊपर वाले 108 की माला में आते हैं, जिस इन पांच बातों में 70 से 30% जो होता है वो सेकंड ग्रेड वाले होते हैं, और थर्ड ग्रेड वाले 30 से 30 से नीचे होते हैं। तो बाबा ने रिजल्ट में बताया था कि ज्यादातर बच्चे सेकंड ग्रेड में हैं, सेकंड ग्रेड में माना मतलब उनकी सेकंड डिवीजन है। तो बाबा ने कहा फर्स्ट ग्रेड में जाने का एक ही तरीका है, बार बार अपने अंदर ये रिवाइज करो कि मैं हूं ही ओरिजिनल पवित्र आत्मा, अनादि आदि स्वरूप में पावन सत्व प्रदान थी, इसको बार बार अंदर स्मृति में इमर्ज करो, चलते फिरते उठते बैठते तो हम कौन से ग्रेड में आ जाएंगे, फर्स्ट ग्रेड में आ जाएंगे। और एक बार मैं बाबा को लास्ट में बताता हूं आपको, एक बार मैंने एक मुरली भी पढ़ी, फिर मैंने चिंतन किया था, मनन चिंतन किया था, मंथन किया था, तो मैंने सोचा अंदर से कि मैंने हम एक दिन में कितने श्वास लेते हैं, हम एक दिन में लगभग 16,000 श्वास लेते हैं, एक मिनट में 14 बार लेते हैं दिन में, रात को 10 सांस लेते हैं एक मिनट में, तो हम 16,000 श्वास लेते हैं। तो जो बच्चे जिनको 16,000 मतलब श्वासों श्वास बाबा और बाबा की मुरली याद रहती है वो अष्टरत्न बनते हैं, जैसे हमारी दादियां, दादियों के पास जब जाओ बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा, बाबा ने आज मुरली में एक, अभी दादी जी आएंगे देखना, मुरली सारी सारी आपको सुबह वाली रिवाइज करा दें, कल वाली मुरली भी रिवाइज करा दें, एक एक बात, वो अष्टरत्न होते हैं। और जो बाबा के बच्चे दिन में कम से कम 108 बार मुरली को रिवाइज करते हैं, मतलब उनको रियलाइज करते हैं अंदर से, वो 108 की माला में आते हैं, मतलब एक घंटे में 10 बार, एक घंटे में लगभग 10 बार नहीं 6 बार। और जो बच्चे कम से कम दिन में 8 बार मुरली को रिवाइज करते हैं वो 16,108 की माला में आते हैं। और जो कम से कम रोज एक बार क्लास में जाके मुरली सुनते हैं वो 9,16,108 की माला में आते हैं, ठीक है। तो हमको इस बात का बहुत गहराई से, अगर हम सत्यों की आदि प्रजा में आना है तो हमको यह करना होगा, क्लास में जाके कम से कम एक बार मुरली रोज सुननी है, टेलीफोन पे नहीं, मोबाइल पे नहीं, टेलीविजन में नहीं, पक्का। तो ये तरीका है हमको 108 की माला 16,108 की माला में आने का। ओम शांति।